आज है 25 फरवरी सन 1967 का प्रातः क्लास। सोसाइटी कहकर के सेवा करने वाले बहुत होते हैं, उनको कहते हैं सोशल वर्कर्स। है तो वो जिस्मानी सेवा और तुम्हारी ये है रूहानी सेवा। क्योंकि वो तो सोसाइटी अनेक प्रकार की होती है, तुम्हारी रूहानी सोसाइटी तो एक ही है और इस सोसाइटी को बनाने वाला बाप है। ये रूहानी सेवा एक ही बार आकर के बाप सिखाते हैं और 5000 वर्ष के ड्रामा में कोई भी आकर के रूहानी सेवा नहीं सिखाते। उन सभा सोसाइटियों की है जिस्मानी सेवा, वो जिस्म की सेवाएं करते हैं, परंतु जो बाप रूहानी सेवा करना सिखाते हैं उनको तो सब याद करते हैं। चाहे कोई भी सभा सोसाइटी के लोग हों, कोई भी धर्म के लोग हों, रूहानी बाप को सब याद करते हैं। तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में भी भगवान को याद करते थे, इससे सिद्ध होता है कि दो बाप हैं। भक्ति मार्ग में दोनों बाप होते हैं, सतयुग में कितने बाप होंगे? सतयुग में रूहानी बाप का किसी को पता नहीं होता, धर्म पिताएं वहां होते नहीं कि इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को कोई याद करे, तो वहां एक ही बाप होगा। देवताएं अपने बाप को नहीं जानते हैं कि उनको देवता किसने बनाया। अभी तुम ब्राह्मणों को कितने बाप हैं? एक तो हुआ रूहानी बाप, दूसरा हुआ जिस्मानी बाप और तीसरा है अलौकिक बाप। रूहानी बाप तो पारलौकिक बाप है ही है। तो रूहानी बाप जिसे कहते हैं पारलौकिक बाप, जिस्मानी बाप जिसने जिस्म को जन्म दिया, और तीसरा है अलौकिक बाप। यहां नया कोई सुनेगा तो कहेंगे ये तो नई बातें बताते हैं। अच्छा, अब बाप कहते हैं कि तुम याद करते थे कि बाप आवेंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई। तो क्या ये सभी और किसी को याद नहीं करते हैं? जब कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई तो दूसरे किसी को याद नहीं करते क्या, या कि याद करते हैं, या कि जैसे कि नहीं करते हैं? याद तो आते हैं, क्योंकि तुम बच्चे देखते हो जैसे कि नहीं देखते हो, औरों को देखते तो हो लेकिन देखते हुए नहीं देखते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि इस समय इन आंखों से जो भी देखते हो वो रहेगा या नहीं रहेगा, सब विनाश होने वाला है, इसलिए इन सबको देखते हुए भी नहीं देखते हो। विष्णुपुरी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उसकी स्थापना होनी है, तो इस पुरानी दुनिया में नष्ट मोह आओ करके हमको रहना है, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ है, अब ये दुनिया जाने वाली है, तो जो भस्म होने वाली दुनिया है उसमें बुद्धि क्या लगाना। नष्ट मोह एक होकर के रहना है, लव एक बाप में ही, बाकी तो ये समझ है कि ये कर्म बंधन खलास होने हैं, तो जिनको देखते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, जिनके साथ है, कर्म संबंध में आते हैं, वो हमारे पूर्व जन्म के हिसाब किताब के लिए हो रहे, बाकी ऐसा नहीं है कि हमारा कोई उनमें अटैचमेंट है। ये शरीर भी छोड़ देना है, देह के संबंध है, देह के पदार्थ, इनमें से भी बुद्धि निकालनी है, लेकिन साथ साथ जो हमारा ये शरीर है इसमें से भी ममत्व हटा देना है, अशरीरी बनना है। और बाप तो यही मेहनत देते हैं, क्या कि देह और देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। जैसे लौकिक बाप को याद करते हो वैसे ही अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करो, ऐसे याद करो जो अंतकाल में भी उसी की याद रहे। कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सुमिरे, तो अंतकाल में स्त्री क्यों याद आती, क्योंकि पुरुष को जीवन भर काम विकार की रग लगी रहती है, तो अंत में भी वही रूप याद आ जाता है। तो बाप कहते इस रीति से मेरे को याद करो कि अंत में मेरे सिवाय और कोई भी याद ना आवे। अंतकाल में नारायण को सिमरना है, सिमरण की बात नहीं है, स्मृति में लाने की बात है। बाप को सिमरना है, ऐसे चिंतन में जो मरे तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का राजा बने। परंतु सतयुग के नारायण का सिमरण नहीं करना है, वो ऊंचे ऊंचे नहीं है। ऊंचे ऊंचे कौन है, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, उससे ऊंचा और कोई होता नहीं है। ये नर से डायरेक्ट नारायण वही बनता है जिसमें सुप्रीम सोल बाप आकर प्रवेश करते हैं। भूल देखो कैसी है, शिव बाबा को याद करना और नारायण बनना। रूहानी बच्चे सब जानते हैं कि रूहानी बाप हमको पढ़ाए रहे हैं, बाप दुख हर करके फिर सुख देते, क्या पहले मुक्ति देते हैं कि जीवन मुक्ति देते हैं, पहले दुखों से मुक्ति देते हैं, छुटकारा, कैसे छुटकारा, दुखों से छुटकारा। आदमी को सुख भी मिल रहा हो और दुख भी मिल रहा हो, एक हाथ आग में जल रहा हो और दूसरे हाथ में रसगुल्ला दे रहा हो तो रसगुल्ला खाएगा या हाथ हटाएगा? ये जो दुख मिल रहा है ना, उससे छुटकारा पाना चाहेगा। तो बाप भी पहले दुख से छुटकारा देते हैं, मुक्ति देते हैं। पहले मुक्ति, फिर बाद में जीवन मुक्ति। तो दुख हरता और सुख करता कहा जाता है। दुख हर करके फिर सुख देते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में है, चौरासीवे जन्म में तुम बहुत दुखी हो जाते हो, तो तुम्हारे दुख हर करके मुक्ति में ले जाते, मुक्ति धाम में, और फिर जीवन मुक्ति सुख धाम में भेज देते हैं। तो दुखों से मुक्ति, दुख हर करके फिर सुख देते हैं ना। बार बार एक दो को ये बातें याद दिलाओ, क्या कि इस दुनिया में एक बाप ही है, वो रूहानी बाप है जो दुख हर करके फिर सुख देते हैं। अब चलो अपने घर, जैसे नाटक पूरा होता है, नाटक पूरा होता है तो घर की याद आ जाती है। यहां भी तुम बच्चे जानते हो कि ये चोला छोड़ करके अब हमें जाना है। इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज से दिल नहीं लगानी है। अगर दिल लगी हुई होगी तो क्या होगा, अंत समय में वो चीज याद आ जाएगी। ये दुनिया को नरक कहा जाता है, क्या स्वर्ग नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? नरक। नरक, नर का, नर माना मनुष्य, अक्का माने करने वाला। मनुष्य जो कुछ करता है वो नरक करता है। नर क्या करता है? नर माना मनुष्य, का माने करने वाला। मनुष्य नरक बनाता है, भूलों का पुतला है ना मनुष्य। मनुष्य सुधरता है तो स्वर्ग बनता है, सुधारने वाला है रूहानी बाप। लेकिन मनुष्य जो कुछ करता है वो नरक बनाता है, और नरको नारायण बनाने वाला बाप वो हमको स्वयं स्थिति में ले जाता है। क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है कि हम कौन है। कोई से पूछो तुम कौन हो तो कह देंगे मैं डॉक्टर हूं, मास्टर हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं, बच्चा हूं, देह की बात बता देंगे। इसका मतलब नहीं जानते हैं ना। अरे देह तो विनाशी है, तुम अगर देह हो, डॉक्टर हो तो जब पैदा हुए थे तब डॉक्टर थे, जब पैदा हुए थे तब बूढ़े थे नहीं। ये तो शरीर के रूप बदलते हैं, तुम बदलने वाले नहीं हो, तुम हो आत्मा। तो ये पहचान कौन देता है? ये रूहों का बाप आकर के पहचान देता है कि तुम ज्योतिबिंदु स्टार आत्मा, जिस आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकल रही है, इसको कहते हैं स्व, अपना। स्व माने अपनापन जिसमें है। हर आदमी पहले अपनी आत्मा के लिए सब कुछ करता है, अपनी आत्मा से सबसे जास्ती प्यार होता है, फिर शरीर से प्यार होता है, फिर अपने बाप अथवा पति से प्यार होता है। तो स्व माने आत्मा, अग्गा मन गया, कहाँ गया? स्व माने आत्मा, गा माने गया माने स्व स्थिति में जो गया, जैसे कि स्वर्ग में गया। देवहानि की स्थिति में आते हैं तो मनुष्य आते हैं, वो मनुष्य नर नरक बनाते हैं, और स्वयं स्थिति बाप आकर बनाते हैं। बार बार प्रैक्टिस कराते हैं अपन को आत्मा समझो, और आत्माओं के बाप मुझ बाप को याद करो। तो बोला इस दुनिया को नरक कहा जाता है, इस पुरानी दुनिया में दिल लगावेंगे तो फंस जावेंगे। वो पुरानी दुनिया किसने बनाई? नई दुनिया कौन बनाता है? मनुष्य बनाते हैं पुरानी दुनिया, दुखदाई दुनिया, और भगवान बनाता है नई दुनिया। तो इस पुरानी दुनिया जो मनुष्यों की बनाई हुई है, इसमें अगर दिल लगाएंगे तो फंस जाएंगे। मुक्ति जो मिलना चाहिए, जो मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। तुमको दोनों बाप लायक बनाते हैं। लौकिक बाप भी चाहता है मेरा बच्चा लायक बने, और पारलौकिक बाप भी चाहता है मेरा बच्चा लायक बने। ससुराल घर ले जाने के लिए श्रृंगार करते हैं, ससुराल में घर में जाते हैं ना, तो जरूर वहां सुख होगा। तुम्हारी ससुराल है विष्णु घर, विष्णु धाम, रावण राज्य में यहां सुख नहीं है। इस दुनिया में तो ससुर घर में भी दुख होता है जब विकारों में गिरते हैं। अब यहां तो आत्माओं और परमात्मा का मेला है, ये मेला बड़ा सुहावना है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम अब जाते हैं बेहद के बाप के पास। षष्ठी में तो ऐसे कोई नहीं समझ सकते क्या कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं? तुम्हारी बुद्धि में आता है कि अब हमको कहां जाना है? बेहद के बाप के पास जाना है, जाना है। जब ये मुरली चल रही थी 1967 में, तो ब्रह्मा के तन में बाप नहीं बोल रहा था, जो सुनने वाले बैठे हुए थे उनके सामने वो सुप्रीम सोल बाप ही तो बोल रहा था। फिर ऐसे क्यों कहा कि तुम बच्चियों की बुद्धि में है कि अब हमको बाप के घर जाना है? जाना है माने भविष्य की तरफ इशारा किया। अभी रूहानी बाप के घर में आए नहीं है, पहुंचे नहीं है, जाना है। किस तरफ इशारा किया है? इशारा किया ना, आबू अब्बा के घर की ओर इशारा किया कि बाप प्रैक्टिकल में, बाप के रूप में संसार के सामने जब प्रत्यक्ष होगा, तो ऐसा संगठन आत्माओं का बनाएगा जहां सब आत्मा आत्म की स्थिति में स्थित होने वाली आत्माएं समूह में इकट्ठी होंगी और वो स्थान होगा माउंट आबू। तब कहेंगे कि बच्चों ने परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लिया, सबकी बुद्धि उस आत्मिक लोक में लगी हुई होगी। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए। अब हम जाते हैं बेहद के बाप के पास, अभी गए नहीं हैं, जाते हैं। षष्ठी में तो ऐसे कोई नहीं समझ सकता क्या कि हम रूहानी बाप के पास जाते हैं, हैं? कोई समझ सकता है? बीके उनकी बुद्धि में ये बात आती है कि हम रूहानी बाप के पास जाते हैं, उनकी बुद्धि में भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हमको रूहानी बाप के पास जाना है, ये दुनिया दुखदाई छोड़नी है, देह और देह के पदार्थ और देह के सब संबंधों से बुद्धियोग हटाना है। तो तुम आत्माओं की ये रूहानी यात्रा है, बाकी तो वो है जिस्मानी यात्राएं जिसमें धक्के खाने जाते हैं। क्या माउंट आबू में भी अभी जाते हैं ना, है? तो धक्के खाने जाते हैं या रूहानी स्टेज में टिक जाते हैं? धक्के खाने जाते हैं, ऐसे थोड़े ही कि दुखों से छूट जाते हैं। तुम जब बाप के घर जावेंगे तो तुम दुखों से छूट जावेंगे, सच्चे बाप के पास पहुंचेंगे। बाप का काम ही है दुख हरता और सुख करता। पहले अपने घर ले जावेंगे, बाद में सुखधाम विष्णु धाम में छोड़ देंगे। यात्रु ऐसे थोड़े ही समझते हैं कि हम वर्षा लेने जाते हैं सुख शांति का, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं रहती कि हम यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ धाम में जाते हैं तो हम सुख शांति का भगवान से वर्षा लेने जा रहे हैं, ये उनकी बुद्धि में नहीं रहता। लेकिन तुम्हारी रूहानी यात्रा ऐसी है जिसमें तुम समझते हो क्या कि अब हम बाप से सुख और शांति का वर्षा लेने के लिए जा रहे हैं। वो भक्त तो दर्शन करने जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं तो वो भक्त सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। बीके नॉलेज में भी जो ब्राह्मण है अधूरे, वो सुख शांति का वर्षा लेने जाते हैं या सिर्फ दर्शन करने जाते हैं? वो ही ब्रह्मा की जड़ मूर्ति ट्रांसलाइट की बनी हुई रखी है, उसका दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं है कि हम जड़ मूर्ति का दर्शन करने जाएंगे, नहीं, हमें तो चैतन्य में प्रैक्टिकल में परमात्मा बाप रूहानियत की स्टेज वाले संगठन के बीच में मिलना है। हम परमधामी स्टेज का अनुभव करेंगे, निसंकल्पी स्टेज का अनुभव करेंगे। अभी तो इस दुनिया में ऐसी निसंकल्पी स्टेज नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? इस दुनिया में क्यों नहीं बन सकती? बार बार देहबान आ जाता है। क्यों आ जाता है देहबान? क्योंकि इस दुनिया में सब देहबान वाले हैं। आत्मिक स्थिति किसी की पक्की हुई नहीं है, तो देहवानियों के संग में आने से हम भी देह अभिमानी बन जाते। अभी हमको जाना है बाप के उस धाम में जहां सब आत्माएं रूहानी स्टेज में टिकी हुई होंगी। अभी तो कितने संकल्प आते हैं, संकल्प विकल्पों की झड़ी लगी रहती है। दुष्ट संकल्प आते हैं तो हम कितने दुखी हो जाते हैं, वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नो संकल्प एटाल, कोई संकल्प हमको प्रभावित नहीं करेगा। तो तुम जानते हो कि तुमको अब वर्षा पाना है बाप से, नई दुनिया की राजाई का वर्षा पाना है। पहले शांति का वर्षा पावेंगे, फिर सुखधाम नई दुनिया का वर्षा पावेंगे। वहां जाने के लिए पावन जरूर बनना है। अभी हम पावन है या पतित है? अभी हमारी मन बुद्धि भी नीचे गड्ढे में जाती है, तन भी शक्ति से क्षीण होता है, तन की शक्ति भी क्षीण होती है, मन की शक्ति भी बिखरती है। और जब तन और मन बिखरता है तो धन भी, दवा दारू में पैसा खर्च करना ही पड़ता है। तो अभी हमारी शक्तियां सब छीण हो रही है। हमको पावन नहीं कहा जा सकता, पतित और पावन। पतित माना नीचे गिरा हुआ, मन से भी नीचे गिरा हुआ, तन से भी नीचे गिरा हुआ, धन से भी नीचे गिरा हुआ। अब हम नीचे से ऊपर उठते हैं, दुर्गति से सदगति में जाते हैं, पतित से पावन बनते हैं, और बनाने वाला है बाप। ये जो नर हैं, जो नरक बनाते हैं, वो तो हमको नीचे गिराते आए। अब नरको नारायण बनाने वाला बाप आया हुआ है। वो कहता है कि तुम अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझेंगे तो मुझे परमात्मा बाप की याद टिक सकेगी। अगर देह समझेंगे तो मेरी याद में टिक नहीं सकेंगे। बाप को जितना तुम याद करेंगे उतना तुम पावन बन जाएंगे। जितने और उतने का सवाल है। सब नंबर वार पावन बनेंगे, एक जैसे पावन नहीं बनेंगे। क्या कोई तो 100% पावन बनेगा, कोई फिर परसेंटेज में पावन बनेंगे। जो 100% पावन बनेगा वो पूरे 84 जन्म लेगा, और परसेंटेज में पावन बनेगा तो कुछ न कुछ कम हो जाएगा। 5000 वर्ष के षष्ठी चक्र में से चक्कर कम हो जाएगा। पूरा चक्कर में वो आत्मा नहीं आ सकती जो कम पावन बनेगी। तो कोई आत्मा एक जन्म लेती है, कोई आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती है। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं वो हैं पक्के पक्के परमात्मा बाप से पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मण बच्चे। जो पक्के ब्राह्मण सो पक्का देवता बनते हैं। तो ऐसे बाप को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। कैसे बाप को याद करने से? ज्योतिबिंदु बाप जो इस षष्ठी पर सिर्फ संगम युग में आता है, 84 जन्म लेता ही नहीं, 5000 वर्ष के चक्कर में ऊपर ही बैठा रहता है उसको याद करने से नहीं, वो सुप्रीम सोल प्लस है। तो ऐसे बाप को याद करने से तुम पावन बन जावेंगे। कैसे बाप को याद करने से? ज्योतिबिंदु बाप जो इस षष्ठी पर सिर्फ संगम युग में आता है, 84 जन्म लेता ही नहीं, 5000 वर्ष के चक्कर में ऊपर ही बैठा रहता है उसको याद करने से नहीं, वो सुप्रीम सोल प्लस साकार बाप। इस मनुष्य षष्ठी का जो साकार बाप है, जिसको शरीर छोड़ते हुए कोई देखता ही नहीं। अपने भक्ति मार्ग में भी मानते हैं क्या कि एक देवता ऐसा है जिसको किसी ने जन्म और मृत्यु में जाते देखा ही नहीं, वो कौन सा देवता है? कहते हैं शंकर महादेव, उनको न किसी ने जन्म देते और सुन लेते हुए देखा और न मृत्यु को पाते हुए देखा। तो जब सारी सृष्टि में विनाश होगा तो सबको मरते हुए शरीर छोड़ते हुए देखेंगे, लेकिन उसको कोई शरीर छोड़ते हुए देखेगा ही नहीं। माना पूरे 5000 वर्ष में वो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है। ऐसे ऑलराउंड पार्टधारी हीरो पार्टधारी में सुप्रीम सोल बाप शिव प्रवेश करते हैं और कहते हैं मुझ बाप को याद करो, जो साकार में निराकार बाप आया हुआ है। इस मनुष्य सृष्टि का साकार बाप भी है, प्रजापिता कहो राम बाप कहो, और उसमें मैं निराकारी स्टेज वाला सदाशिव भी प्रवेश करता हूं। तो ऐसे साकार में निराकार को याद करेंगे तो तुम पावन जरूर बन जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इतनी ही याद करना है कि याद करते करते इस देह को भी भूल जाना, देह याद ही ना आवे। तुम बच्चों को मेहनत करनी है क्या? ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई भी समझ सकता है। बेसिक नॉलेज भी बहुत सहज और एडवांस ज्ञान भी बहुत सहज है, लेकिन कठिन क्या है? ऐसी स्थिति धारण करना, ऐसी नुवानियत की स्टेज को धारण करना, इसमें मेहनत है। यहां तुम बाप के सम्मुख बैठ समझ जाते हो, दूसरों को भी समझाते हो कि पावन बनने के लिए एक ही याद है। जो रास्ता बताते हैं उनका शुक्रिया माना जाता है। तो यहां भी जो बाप का परिचय हमको देते हैं, अच्छी रीति बताते हैं, बाप से वर्षा पाने का रास्ता बताते हैं, तो उनको शुक्रिया किया जाता है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हम बाप से वर्षा पाते हैं। जिन्होंने भक्ति जास्ती की होगी क्या, भगवान बाप आता तो है, पढ़ाई तो पढ़ाता है, लेकिन कोई अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ते। क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, कोई डल हेडेड होते हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ते फेल हो जाते हैं, और कोई बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं। ऐसे क्यों होता है? वहां तो कहेंगे कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार इनको बुद्धि ही ऐसी मिली, ये डल हेडेड है, ये श्रूट बुद्धि है, तो बुद्धि का कमाल हुआ। ये बुद्धि कहां से मिली? पूर्व जन्म की प्रारब्ध से मिली। यहां बाप कहते हैं जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी 63 जन्मों में, वो जास्ती ज्ञान उठा लेंगे। जिन्होंने सतोप्रधान भक्ति की होगी वो सतोप्रधान ज्ञान उठावेंगे, जिन्होंने तमोप्रधान भक्ति की होगी वो तमोप्रधान विभिचारी ज्ञान उठावेंगे, जिन्होंने एक की भक्ति की होगी वो एक से ज्ञान सुनेंगे, और जिन्होंने विभिचारी भक्ति की होगी वो अनेकों से ज्ञान सुनेंगे। तो फायदे में कौन रहेगा? एक से ज्ञान सुनने वाला फायदे में रहेगा या अनेकों से ज्ञान सुनने वाला फायदे में रहेगा? हिंदुओं की क्या हालत हुई? हिंदू ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। पहले तो दुनिया में सिर्फ भारत ही था ना, दूसरे धर्मखंड तो थे ही नहीं। जैसे अमेरिका 500 साल पहले था ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले थी ही नहीं, ऐसे ही और धर्मखंड पहले थे ही नहीं, धर्म ही नहीं थे, धर्म पिताएं ही नहीं आए थे, तो और धर्म कहां से आ जाएंगे? उनके फॉलोअर्स आने का सवाल ही नहीं। तो सिर्फ भारत में देवता धर्म था, सनातन धर्म जिसे कहा जाता है, वो देवता धर्म के लोग बाद में अपन को हिंदू कहने लगे। वो हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए, कोई इस्लाम धर्म में गए, कोई क्रिश्चियन धर्म में गए, कोई बौद्ध धर्म में गए। तो हिंदू धर्म है तो सबसे पुराना, लेकिन जनसंख्या थोड़ी रह गई। क्यों रह गई थोड़ी? पॉपुलेशन हिंदुओं की कम क्यों हो गई? क्योंकि दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए, भारतवासियों को धोखा देते गए, और दूसरे दूसरे धर्म पिताओं को अपना बाप बना लिया। तो यहां होती है शूटिंग, जब भगवान बाप आते हैं तो वो डायरेक्टर बनकर के शूटिंग कराते हैं। इस शूटिंग में पता लग जाता है कि जो अनेकों का ज्ञान सुनते हैं तो सब कन्वर्ट होने वाले। यहां ब्राह्मणों में भी ऐसे है, कोई आज से लेकर के अंत तक एक बाप से ही सुनेंगे, और कोई ऐसे होंगे एक बाप से नहीं सुनेंगे औरों से भी सुनते रहेंगे। औरों की सुनेंगे तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा, विविचारी ज्ञान होगा तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताया कि जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वो जास्ती ज्ञान उठावेंगे, जिन्होंने सतोप्रधान भक्ति की होगी वो सतोप्रधान ज्ञान उठावेंगे, जिन्होंने विविचारी भक्ति की होगी वे ज्ञान भी विविचारी उठावेंगे। बाप को याद करेंगे तो ऊंच पद पावेंगे, जितना याद करेंगे उतना ही समझा जाएगा इसने भक्ति जास्ती की है, इसलिए बाप की याद आती है। कोई को बाप की याद आती है और कोई कहते हैं हमको बाबा याद ही नहीं आता, हमें बाबा का चेहरा ही भूल जाता है, हम बिंदी को कैसे याद करें? समस्या खड़ी रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई को ज्यादा याद आती है और कोई की बहुत कम याद आती है? जिन्होंने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती याद आता है, और जिन्होंने कम भक्ति की है उनको कम याद आता है। जल्दी कर्मातीत अवस्था को पावेंगे तो समझा जाएगा कि इन्होंने बहुत तीखी भक्ति की है। भक्ति में भी ये तीखे भक्त होकर के रहे और अब विचारी भक्त होकर के रहे, एक की भक्ति की है। तो अपनी नमज अपने आप देख सकते हैं, जितना याद करेंगे उतनी खुशी होगी। याद करना कोई तकलीफ की बात नहीं है, हठ योग तो तकलीफ की बात होती है। शीर्षासन लगा के खड़े हो जाते हैं, कुंभक लगाते हैं, श्वास रोक लेते हैं, आसन लगाते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, कितनी तकलीफ होती है। यहां तो बाप की याद में कोई तकलीफ नहीं है, फिर याद आती क्यों नहीं है? कोई कोई कहते हैं हमें याद भूल जाती है, बार बार याद भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? हैं? क्योंकि जो 63 जन्म हुए हैं, उन 63 जन्मों में जिन्होंने जितना जास्ती भक्ति की है उतना ही जास्ती याद आ गई। जिन्होंने जितना राम कृष्ण जैसी आत्माओं का संग किया है उनको उतनी जास्ती याद आती है। बाकी कोई तकलीफ की बात नहीं है। हाँ, याद में माया विघ्न जरूर डालती है, ज्ञान में विघ्न नहीं डालती, याद में विघ्न डालती। माया माने क्या? मां आया, मां माने नहीं, निगेटिव। निगेटिव और पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव माने पुरुष, निगेटिव माने मेल फीमेल होता है ना, जैसे प्लक होता है, एक होता है मेल प्लक, एक होता है फीमेल प्लक। तो एक को कहते हैं पॉजिटिव, एक को कहते हैं निगेटिव। तो मां आया, मां माने नहीं, और आया माने आया, माने ना आया होता तो अच्छा था। क्या ये माया याद करते करते जो माया आ जाती है, ये ना आई होती तो अच्छा था, लेकिन माया आ जाती है। क्यों आ जाती है, किस रूप में आ जाती है? 63 जन्मों में एक बाप से हट करके, यानी राम बाप से हट करके जिन जिन में बुद्धि लगाई है, जिन जिन का संग किया है, वो ही आत्माएं स्त्री या पुरुष रूप धारण करके विघ्न रूप बन करके हमारे सामने आ जाते हैं। तो वो स्त्री या पुरुष माया का रूप हुए ना, क्या हुए? मायावी रूप बन गए हमारे लिए। तो वो माया ना आई होती तो हमारा पुरुषार्थ बहुत तीखा जाता, इसलिए उसका नाम पड़ गया माया। अभी बाप कहते हैं मेरे को पहचानो, मेरी पहचान न होने की वजह से माया बार बार विघ्न डालती है। माया मेरी बेटी है, मैंने उसको डायरेक्शन दिया हुआ है कि जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं, मनमत पर चलते हैं, या किसी और मनुष्य की मत पर चल पड़ते हैं, हे माया बेटी तुम उनको खूब फटकाओ, खूब तंग करो, तंग होते होते वो समझ जावेंगे क्या कि एक की मत पर चलना चाहिए। जो ऊंचते ऊंच बाप है उस ऊंचते ऊंच बाप की ऊंचते ऊंच मत पर चलेंगे तो माया नहीं आवेगी। ये माया को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या क्या अच्छा तरीका है? कि ये बुद्धि में याद रहे कि हमने बाप को पहचानने में कोई गलती की है, पूरा पहचाना नहीं है। बाप तो कहते हैं जो मेरे साथ रहने वाले हैं वो भी मेरे को पूरा नहीं पहचानते। साथ रहने वालों को तो पूरा पहचानना चाहिए ना, लेकिन वो भी नहीं पहचानते। इससे क्या मतलब, क्या फायदा, क्या निकलता है? कि जो साथ रहने वाले हैं उन्होंने भी बाप की पहचान माना ज्ञान, जानकारी पूरी जानकारी नहीं उठाई। मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूं, उस स्वरूप को जीव का त्यों पहचाना नहीं। अच्छा, ओम शांति।